Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444-2342-1050. And 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav. With me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar. Market Mantra ke Itazank mein aapka swagat hai. Karobari saptah ka pehla din sombar aur har sombar ki tarah hum aapko aamantrit kar rahe hai apne is ank mein. Poochhiye humse arthniti karobar ya share bazaar se joda hua koi bhi sawal. Bas dhyan rakhiyega. Hum kisi khas company ya share ke bare mein jankari aapko nahi uplabdh kara sakte hain. हमसे बात करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444-2342-1050 या फिर 2331-0464. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार राजीव रंजन झा. राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव.
Begin with the headlines. Benchmark domestic indices rebound. Sensex surges nearly 950 points. Nifty closes above 25,000. Major Asian indices end negative zone. And global crude oil prices drop around 5%.
Garilu share bazaar ka rukh aaj palta. Sensex lagbhag 950 ank uchla. Nifty 25,000 ke star se upar uthkar hua band. Asia ke pramukh bazaar aaj ghate ke saath hue band. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम लगभग 5% लुढ़के. घरेलू शेयर बाजार में कल हुई बड़ी गिरावट के बाद आज फिर से निवेशकों ने खरीदारी शुरू कर दी. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक बढ़त के साथ वापस पटरी पर आते दिख रहे हैं. कल आम बजट के दौरान बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज भी शुरुआत कमजोर ही रही. हालांकि बाद में बाजार ने रंग पकड़ना शुरू किया और मूल्य आधारित खरीदारी से प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर शुरुआती रुझान में देखने को मिला. दोपहर के बाद निवेशकों ने खरीदना शुरू कर दिया. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 944 अंक बढ़त के साथ 81,666 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 263 अंक बढ़त के साथ 25,088 पर बंद हुआ.
Before we take the story on the detailed stock, here is a must disclaimer announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And now back to the detailed stock story. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, bounced back today, gaining over 1%, aided by value buying after a steep decline in the special budget session. Markets started the day on a negative note amid weak global cues. However, they managed to recover and traded higher throughout the afternoon session. The Sensex jumped 944 points to close at 81,666, while the Nifty climbed 263 points to settle at 25,088.
हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. आप सबों से आग्रह, फोन लाइन पर बने रहिए. पहले हम शेयर बाजार की पूरी खबर आपको देते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे. सेंसेक्स पैक की 30 में से 25 कंपनियां आज लाभ में रहीं। सबसे अधिक लाभ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को हुआ। इसके शेयर 7.6% उछाल के साथ बंद हुए। अदानी पोर्ट्स के शेयरों में लगभग 4.8% की तेजी आई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 3.3% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। नुकसान उठाने वालों में अव्वल रही कंपनी एक्सिस बैंक, जिसके शेयर 2% नुकसान के साथ बंद हुए। इन्फोसिस में 1.8% से अधिक और TCS के शेयर 0.5% से अधिक नुकसान के साथ बंद हुए।
Among the sectoral indices at the BSE, 19 out of 22 sectors edged upward. In the gainers, utilities rose around 2.7%, power increased over 2.5%, and auto as well as energy added nearly 2%. Among the key decliners, IT slipped 0.7%, focused IT dropped nearly 0.4%, and healthcare dipped 0.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,220 companies declined. 2039 advanced and 169 remained unchanged.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 48 पैसे मजबूत हुआ। 91.51 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 97.07 पर चल रहा था।
And we have our first caller from Maharashtra. Vednath is joining us. Vednath, welcome to the show. Please ask your question.
Namaskar, sir.
Vednath ji, सवाल पूछिए।
सवाल इस प्रकार से है कि STT अभी ये बड़ा है, जो FNO में काम करने वाले का जो ब्रेक लगी है, और इससे विदेशी निवेशक पे निवेशक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? धन्यवाद
जी। देखिए, एसटीटी बढ़ाया गया निस्संदेह, और इसके चलते हमने बजट वाले दिन यानी कल रविवार को भारतीय बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा। काफी ज्यादा एकदम से बिकवाली का दबाव उभरा था। लेकिन कल आपने एफआईआई के संदर्भ में सवाल पूछा है, तो दिलचस्प बात नोट कीजिए कि कल एफआईआई आमतौर पर छुट्टी पे थे, वे भारतीय बाजार में कल सक्रिय नहीं थे, क्योंकि रविवार उनके लिए छुट्टी का दिन है। हमने काम किया, भारत के लोगों ने काम किया, लेकिन एफआईआई मोटे तौर पर बाहर थे बाजार से। आज वो वापस लौटे और आज आपने बाजार का हाल देखा। कल जितनी बड़ी बिकवाली हुई थी उसके मुकाबले फिर आज हमने बाजार को काफी अच्छी तरह से वापस संभलते हुए देखा। तो ये अपने आप में बताता है कि FIIs ने आज बाजार को गिराने में कोई ऐसा योगदान उस तरह से नहीं किया, या जैसी घबराहट घरेलू कारोबारियों को हो गई वैसी घबराहट FIIs को नहीं हुई। ये बात आज के प्रदर्शन से आप समझ सकते हैं।
दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर है विनय। विनय जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
मार्केट मंथ टीम के सभी सदस्यों को नमस्कार
जी। नमस्ते।
जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि मेटल्स में खास तौर से सोने में पिछले एक सालों से वृद्धि दर काफी तेज थी, और पिछले एक महीने में तो काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई थी। पिछले तीन दिनों में 1,83,000 से घट के लगभग 1,43,000 तक आ गया सोना। परहैप्स ये चांदी की और बाकी दूसरे मेटल्स में गिरावट की वजह से भी हो सकता है। तो बस मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर एक साल के लिए अगर गोल्ड में क्या फ्यूचर हम लोग देख सकते हैं?
जी विनय जी, पिछले कई कार्यक्रमों में जब भी मुझसे यह पूछा गया कि सोना चांदी बहुत तेज आगे जा रहे हैं, इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, मैंने हर बार सावधानी बरतने की सलाह दी, और गलत होने का खतरा उठाते हुए भी मैंने यही कहा कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं, अभी हाथ लगाएंगे तो हाथ जल सकते हैं। और किस तरह के उतार चढ़ाव की संभावना बन रही थी, जो आशंका थी मुझे, वो आपने पिछले 2-3 दिनों के अंदर देखा है। तो इस तरह का उतार चढ़ाव झेलने की क्षमता रिटेल कारोबारियों के अंदर, निवेशकों के अंदर नहीं होती है, और इसीलिए मैं बार बार सावधान कर रहा था कि अभी सोने चांदी की चाल बहुत तेज़ है, इसमें आम निवेशकों को, आम कारोबारियों को, छोटे कारोबारियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और वो बात, वो आशंका पिछले 2-3 दिनों में बिल्कुल सही साबित हुई है। एक रिटेल निवेशक के लिए सबसे बढ़िया रणनीति ये रहती है कि आपको एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना है, और उसका संक्षेप में मतलब ये है कि अलग अलग तरह की संपत्तियां, जैसे कि शेयर बाजार है, रियल स्टेट है, सोना चांदी है, FD के अंदर जो आप पैसा रखते हैं या डेट फंड्स में पैसा रखते हैं, इन सब के बीच में एक संतुलन बना के रखिए। हर तरह के एसेट का, हर तरह की संपत्ति का एक कोटा बना के रखिए कि भाई मुझे, मान लीजिए सोने के अंदर 5% या 10% या 15%, जैसे आपकी इच्छा होती है, जितना आपके जोखिम उठाने की क्षमता है उसके हिसाब से, या जैसा आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएं, उसके हिसाब से आपको कोटा तय करके रखना चाहिए कि मुझे सोने चांदी में 5-10% पैसा रखना है और नियमित रूप से किसी एक भाव पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं डालना है।
एंड वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, वी हैव बीन जॉइंड बाय केशव, वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन केशव।
हेलो नमस्कार
जी। केशव नमस्कार, प्लीज अपना सवाल पूछें।
सर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछले समय जब राष्ट्रमंडली अध्यक्ष रहे थे उनके साथ समझौता हुआ उन देशों के साथ, तो हमारे को क्या क्या चीजों में सस्ते होने की बातें कही गई है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सोना जो है अगर विदेश से कोई लेके आता है उसमें बिना ड्यूटी के कितना सोना वो ला सकता है एक इंसान, लेडीज के ऊपर कितना है, जेंट्स के ऊपर कितना, इसके ऊपर जरा कृपा करके जानकारी दीजिए
जी। देखिए संभवतः ये यूरोपीय संघ के साथ जो अभी समझौता हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी विस्तृत सूची है और भारत जितने सामान निर्यात करता है यूरोप को उसमें से लगभग 90% के आसपास, लगभग कह रहा हूँ, वो सामान इस समझौते के दायरे में आ जाते हैं। और इसी तरह से यूरोप से भारत में जो सामान आते हैं उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या जो है वो इस FTA के अंदर शामिल की जाएगी, लेकिन वो चरणबद्ध तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए कारों का ही उदाहरण ले तो पहले ड्यूटी घट करके एक स्तर पे आएगी, उसके बाद फिर थोड़ी और घटेगी कुछ समय समय के अंतराल पे। इसका एक कैलेंडर या टाइम टेबल जैसा बनाया हुआ है। अब अंततः फिर जब जितने सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ के वो सब के सब जहाँ पर जाकर के एक पुष्टि करेंगे, सबके सारे देशों की संसद में इसकी पुष्टि होगी, उसके बाद ये समझौता लागू होगा। तो वो समझौता लागू होने में कितना समय लगता है, कुछ महीने या एक आध साल, हो सकता है एक साल के अंदर ये समझौता लागू हो जाए, उस समय से ये जो कीमतों का अंतर है वो हमें दिखना शुरू होगा।
भोपाल से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर शंकर। शंकर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
हेलो
जी, आप जुड़ चुके हैं शंकर।
हाँ सर, सवाल
शंकर जी आपसे आग्रह कि आपके शंकर जी से आग्रह कि आप फिर से हमें संपर्क करें क्योंकि आपकी आवाज बहुत साफ साफ हमें सुनाई नहीं दे रही थी। आइए खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशिया के प्रमुख शेयर बाजार, जहां आज गिरावट के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए। बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.2% से अधिक लुढ़क गया। बाजार में गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नए मुखिया का नॉमिनेशन किया जाना तथा चांदी और सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट को माना जा रहा है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.5% के आसपास नुकसान में रहा। हांगकांग के हेंगसिंग में 2.2% से अधिक की गिरावट आई। उधर जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.2% से अधिक नीचे गिरकर बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में भी लगभग 0.3% की कमी आई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां लिवाली चल रही थी। जर्मनी का डेक्स 0.9% से ऊपर चल रहा था। लंदन का फुटसी 100 0.5% से अधिक बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। फ्रांस के कैक 40 में भी लगभग 0.5% के आसपास से थोड़ी सी अधिक बढ़त चल रही थी। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिल्ली से योगेश। योगेश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
जी आप सभी को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि क्या एक रिटेल निवेशक को, एक खुदरा निवेशक को चांदी में निवेश करना चाहिए भी या फिर सिर्फ गोल्ड तक ही सीमित रहना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि बजट का फॉरेन इन्वेस्टर्स पे कैसा प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव?
जी देखिए योगेश जी, चांदी को आप ऐसा ना समझे कि उसमें हाथ नहीं लगाना है, लेकिन मैंने पहले जब भी कहा भाव बहुत तेज थे इसके चलते मैंने कहा कि अभी हाथ मत लगाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदरा निवेशकों को उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, वो उनके लिए विकल्प है ही नहीं। आप सिल्वर ETF बहुत सारे आ गए हैं, आप सिल्वर ETF में SIP के माध्यम से पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं, वो अच्छा तरीका रहेगा आपके लिए। FIIs के लिए अगर बजट की बात करें तो उन्हें मुख्य रूप से देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये बजट कैसा काम करेगा। उस मोर्चे पर इस बजट को काफ़ी अच्छी तरह से सराहा जा सकता है और इसलिए FII को इस बजट से और ज़्यादा भरोसा बढ़ना चाहिए।
हमारे साथ अब खबरों का सिलसिला, श्रोताओं से आग्रह कुछ पल आप इंतजार करें, उसके बाद आपसे हम बातचीत करेंगे।
Calling the Union Budget 2026-27 futuristic, Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said that the budget lays the roadmap for the next quarter of the century. Addressing a press conference in New Delhi today, Dr. Singh highlighted that the allocation of 10,000 crore rupees for biopharma Shakti will strengthen India's position in the biomanufacturing sector.
All these provisions which the finance minister announced, are each one of them is part of some other larger ecosystem. She has announced extension of custom duty on imports on components for nuclear plants till 2035, which means the domestic investor, even the international investor, would be encouraged to get the best of the parts so that we have quality nuclear plants. And of course, the rare earth corridors which were being mentioned, four of these. Similarly, persons of Indian origin will be permitted to invest in listed companies. So that again is going to benefit all these. Now, as far as the Department of Science and Technology is concerned, to add to what Abhay was saying, we have a very visionary announcement made in the forward National Geospatial Mission.
He said that the 20,000 crore rupees allocation in carbon capture, utilization and storage is a critical step towards industrial decarbonization, circular economy and environmental sustainability. Dr. Singh also announced structured deployment of AI in agriculture, ensuring farmers benefit from technology while being safeguarded from its unintended effects. The minister underlined that the budget ensures inclusivity with measures that directly benefit the poorest sections, including women-led entrepreneurship programs and livelihood generation through science-based interventions.
आइए चलें महाराष्ट्र. हमारे साथ फोन लाइन पर हैं के शुक्ला. स्वागत आपका. सवाल पूछिए.
जी, मेरा क्वेश्चन ये है. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मेरा क्वेश्चन ये है कि 2008 में जो क्राइसिस हुआ था अमेरिका में
जी,
तो उसका इफेक्ट सोने पे क्या कैसा पड़ा था? और सेकेंड ये कि रुपए का और सोने का क्या संबंध है?
जी देखिए, रुपए और सोने का संबंध जो आप समझना चाहते हैं, रुपए का सोने में सीधा संबंध नहीं होगा. रुपए और डॉलर का संबंध पहले जुड़ेगा और फिर डॉलर में सोने की कीमत क्या होती है उसके हिसाब से, क्योंकि सोना अधिकांशतः हमारे लिए आयातित चीज है और वो आयात मुख्यतः डॉलर में होता है. इसलिए दो तरीके से आपको देखना पड़ता है, डॉलर और सोने की स्थिति कैसी है. यानी एक किलो सोने की या 10 ग्राम सोने की कीमत आपके डॉलर भाव में क्या आ रही है और डॉलर की विनिमय दर रुपए के साथ किस तरह की है, इसके आधार पर आपकी यहां पर कॉस्ट तय होती है.
भोपाल हम चलते हैं. हमारे साथ फोन लाइन पर शंकर. शंकर जी, स्वागत आपका. सवाल पूछिए.
नमस्ते सर, मगध मंत्रा टीम को.
जी नमस्ते.
मेरा सवाल पहला है कि सर, कल पीएसयू बैंक के शेयर गिरे, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि बेचने वाले मोस्टली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे, एफआईआई तो थे नहीं, तो क्या वजह थी कि जिससे सिर्फ पीएसयू बैंक गिरे? और दूसरा सवाल है कि सर, आरबीआई ने अपना फेडेक फेडरल रिजर्व के बॉन्ड्स का एक्सपोजर कम किया है, कहते हैं 26% तक कम किया है, तो इसी वजह से सोना बहुत तेज चला है एंड अब उन्होंने रोक दिया है खरीदना, क्योंकि वो सारा तो चेंज कर नहीं सकते सोने में. So is the good time for Indian equity back very soon? क्या आपका क्या विचार है? हम लोग छोटे निवेशकों के लिए थोड़ा गाइड करें. थैंक यू.
जी, इनका पहला सवाल भूल गया मैं, क्या था?
इनके दो सवाल रहे हैं. एक सवाल इन्होंने जानना चाहा है अभी.
They were talking about that there hasn't been a lot of investment through the FIIs. It was all through the domestic investors.
First was about the PSU bank. PSU bank कल क्यों गिरे?
जी बिल्कुल.
और कल FIIs नहीं थे, इन दो पर आधारित इनका सवाल रहा है.
देखिए, PSU बैंकों का एक दिन गिरना जो है उससे कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हाल के दिनों में PSU बैंकों की ओर बाजार में खरीदारी का रुझान बहुत तेज था और उसके चलते मूल्यांकन की तुलना जब हम करते हैं तो पीएसयू बैंकों का मूल्यांकन उनके हिस्टोरिकल एवरेजेस की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा था. उसके विपरीत जो निजी बैंकों में हाल के महीनों में खरीदारी कम रही है और वहां पर अब लोगों को ज्यादा आकर्षण दिख रहा है. तो ये आप एक तरह से समझ लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर में जिन लोगों को निवेश करना होता है वो हमेशा सोचते हैं पीएसयू में लगाएं या प्राइवेट में लगाएं, और कभी पीएसयू बैंकों का मूल्यांकन आगे बढ़ा हुआ दिखता है, कभी निजी बैंकों का. आमतौर पर पहले निजी बैंकों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी बाजार में, लेकिन हाल में पीएसयू बैंकों ने भी अपना जो दमखम दिखाया है और खासतौर पर बाजार के अंदर अपने तमाम ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, अपने मैट्रिक्स को संभाला है, सुधारा है, और खासतौर पे एनपीए की चिंता बाजार को जो रहती थी वो पीएसयू बैंकों में हाल में काफी कम हुई है। उनके तमाम एनपीए के स्तर जो है, ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, वो निचले स्तरों पे चल रहा है। इसके चलते बाजार का भरोसा बढ़ा, लेकिन फिर जब बाजार में किसी एक चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो धीरे धीरे भाव बढ़ जाते हैं, मूल्यांकन बढ़ जाता है। आप तमाम पीएसयू बैंकों के भाव आप पिछले साल भर के मुकाबले, दो साल के मुकाबले देखें, काफी बढ़े हुए मिलेंगे। तो बाजार में इसी तरह से रोटेशन चलता रहता है, वो एक तरह का रोटेशन आप समझ लीजिए पीएसयू और प्राइवेट बैंकों के बीच में हो रहा है।
बाजार में कल की गिरावट को यदि समझना चाहें तो मुख्य कारण सिर्फ एसटीटी में जो कह लें थोड़ी बहुत परिवर्तन हुआ वही मुख्य कारक, या कुछ और कारक रहे बाजार के कल की बड़ी गिरावट के?
शेयर बाजार के लिए बजट में और कोई ऐसी बड़ी निराशा नहीं है, वो एक भावनात्मक झटका था। लोग बाजार में ये मान के चल रहे थे कि चलिए कुछ तो हमारे लिए एसटीटी या कैपिटल गेन के मामले में कुछ रियायत मिलेगी, उसके बदले अगर एसटीटी की दर बढ़ी तो बाजार में उसके चलते एक नकारात्मक भावना बनी, उसका असर हमें दिखा। लेकिन वो एक दिन की बात रही, वो हमें आज समझ में आ गया। अंततः सबको ये दिख रहा है कि बाजार यही चलना है, अर्थव्यवस्था ऐसी ही हमारी चलनी है, अच्छी रहनी है, आगे चल करके जो मौके हैं वो इसी बाजार में मिलने हैं, कोई इस बाजार से बाहर नहीं जाने वाला है। तो फिर वापस आज बाजार पटरी पर लौटता हुआ दिखा।
आइए चले गंगानगर, हमारे साथ फोनलाइन पर हैं श्रवण। श्रवण जी स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि मार्केट टीम, मंत्रा टीम को तो धन्यवाद सर। बजट पे हमें किसानों को क्या है, इसमें कुछ शेयर बाजार ने अलावा बजट में जो सीतारमन जी ने पेश किया है
जी, कृषि क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान मुख्य रूप से रहे, किसानों को क्या लाभ?
देखिए सरकार किसी भी बजट में कृषि क्षेत्र को तो छोड़ नहीं सकती, और तमाम जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं वो सारी की सारी योजनाएं चली आ रही हैं, और इस बजट में भी कृषि के लिए विशेष रूप से कई सारे प्रावधान किए गए हैं, काफी लंबे हैं। उनके डिटेल में न जाते हुए मैं यही कहूंगा कि कृषि क्षेत्र के लिए कोई विशेष आप बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहें, और कृषि को आप सिर्फ ये ना समझें कि आप बस मतलब जो खेतों में उपज रहा है, अब जैसे आप उसी के व्यापक दायरे में देखें तो फिशरीज के लिए भी जिस तरह से अलग से प्रावधान किए गए, आप हर तरह से मत्स्य पालन में भी ध्यान दें
जी,
एक विस्तृत रुझान इसका है।
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सरकार ने ईमेल के माध्यम से प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है जिसमें लोगों से ई पैन कार्ड डाउनलोड करने का अनुरोध किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि प्रसारित हो रहे ऐसे ईमेल फर्जी हैं और जालसाजी का प्रयास हो सकते हैं। सरकार ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया है कि वे वित्तीय और संवेदनशील जानकारी साझा करने से संबंधित ऐसे किसी भी ईमेल, लिंक या कॉल और एसएमएस का जवाब न दें। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का भी खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जल्दी और आसान रिटर्न देने वाली किसी निवेश योजना का प्रचार कर रही हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि यह दावा निराधार है, वित्त मंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना का प्रचार प्रसार नहीं किया है। सरकार ने नागरिकों से इस तरह की योजनाओं के बहकावे में न आने का आग्रह किया है क्योंकि ये धोखाधड़ी का प्रयास हो सकता है। पीआईबी ने यह भी कहा कि लोग किसी भी सूचना पर भरोसा करने या फिर उसे साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि अवश्य कर लें। यहां पर यदि हम समझना चाहेंगे या कह लें कि मार्केट मंत्र कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता समझने का प्रयास करेंगे कि वित्त मंत्री के नाम पर जो वीडियो हमने, आपने या जिस किसी ने देखा उसकी पुष्टि कहां करें, कैसे करें, और इस तरह के जो समाचार फैलते हैं वो कितने सच्चे कितने झूठे होते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को?
वह वीडियो मैंने भी देखा
जी,
ऐसा एक वीडियो मेरे सामने भी आया, और बहुत स्पष्ट सी बात है कि वित्त मंत्री का यह काम नहीं है कि वो इस तरह से एक योजना के बारे में किसी को निवेश के बारे में प्रोत्साहन देने के लिए कहें या कोई निजी योजना के का प्रचार करें। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फर्जी है। तो इस तरह के फर्जी वीडियो एआई की मदद से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एआई के बढ़ते चलन का एक स्वाभाविक खतरा है, लेकिन लोगों को अपनी समझ, अपने विवेक का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एक बड़े उद्योगपति का वीडियो आया एक बड़े एक्सचेंज के सीईओ का इस तरह का वीडियो आया, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं, ये व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। ये उनका एक तरह से बिल्कुल अस्वाभाविक होगा कि वो ऐसे किसी चीज के बारे में आकर के बोलें। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा।
श्रोताओं, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी आपके मन में लोभ है, आपके मन में लालच है और आपके मन में बहुत कम समय में कोई ऐसा लुभावना, सुनहला आपको वायदा किया जा रहा है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, तो वहां सतर्क हो जाएं। ये मैं समझता हूं कि सुझाव हमारे विशेषज्ञ देना चाहेंगे आपको कि विश्वास आप तुरंत ना करें। कोई भी व्यक्ति जो आपको जैसे वित्त मंत्री के नाम से आश्वासन दिया जा रहा है कि आप ये कर लें, या उद्योगपति के नाम से दिया जा रहा है कि आप ऐसा कर लें, तो वो कम अवधि में आपको अत्यधिक आकर्षक लाभ यदि दिख रहा तो वहां उस पर विश्वास करने के बजाय आपको सतर्क होना चाहिए। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
Absolutely, what seems to be too shiny might just be a fake. Moving on to our news bulletins again. Global crude oil prices fell around 5% today amid fading fears of a supply shock after US President Donald Trump's statements on Iran signaled a possible easing in tensions. US President had said that Iran was seriously engaging with Washington and expressed hope that Tehran would agree to a deal abandoning nuclear weapons. Brent crude was trading at 4.8% down at $65.99 per barrel, and WTI crude was trading 5.1% lower at $61.87 per barrel.
यहाँ पर समझना चाहेंगे तेल के दाम के, तेल किस दिशा में जाता दिख रहा है आज भी, यदि अच्छी खासी लगभग 5% के आसपास गिरावट है, क्या प्रमुख कारण रहे?
तेल की सारी कीमतों में जो उतार चढ़ाव रहा, बीच में $70 के आसपास भी कीमतें चली गई थी, उससे पहले 60 के आसपास चल रही थी। ये सारा उतार चढ़ाव इसलिए हुआ क्योंकि अचानक से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता हुआ दिखा और आशंका बनी कि कभी भी वहां युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जब वो आशंकाएं थी उस समय भाव 70 के आसपास उसके ऊपर भी जाते हुए दिखे, लेकिन जैसे ही ये लगा कि नहीं, लड़ाई नहीं छेड़ने वाली है, वो भावना जैसे ही बाजार में लौटी तो फिर ये भाव नरम हो गए।
आइए चले सर्राफा बाजार की ओर।
In the Indian bullion market, precious metals recovered slightly from the fall suffered earlier in this session. 24 karat gold was trading 1% up at 1,49,730 rupees per 10 grams. Silver was trading 2.7% down at 2,59,220 rupees per kilogram a short while ago.
आइए आपको लिए चलें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर आज अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार मिलने तक फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 2.9% बढ़त के साथ 1,46,303 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 2.3% कम होकर 2,59,600 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। इससे पहले कारोबार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर मजबूत होने तथा ट्रेजरी यील्ड के दाम बढ़ने से सोने और चांदी में नरमी चल रही थी। गौरतलब है कि पिछले कारोबारी सप्ताह में अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख के तौर पर केविन वॉश को मनोनीत किए जाने के बाद सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट हुई थी। दरअसल केविन वॉश को ब्याजदर नीति के मामले में अधिक आक्रामक माना जाता है। उनकी नियुक्ति को लेकर निवेशकों में मूल्यवान धातुओं की खरीदारी को लेकर रुझान थोड़ा घट गया और एक आशंका बनी, जिसके चलते सोने और चांदी के दाम चौतरफा लुढ़कने लगे। यहां बहुत संक्षिप्त सी आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, सोना चांदी अब किस दिशा में जाता दिख रहा, बहुत संक्षिप्त में।
जी, उतार चढ़ाव रहेगा, एक झटके में आप नहीं मान सकते कि वापस बहुत तेज चाल आ जाएगी या बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट अब इन स्तरों से भी शायद ना आए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन कम नहीं हुए हैं।
बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rebound. Sensex surges nearly 950 points. Nifty closes above 25,000. Major Asian indices end in negative zone. And global crude oil prices drop around 5%. That's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।